तो ये ऐसे घोड़े हैं जो बहुत खास घोड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज देख लें, गाड़ियां तो सबके पास ही होती हैं, पर कोई ऐसी गाड़ियां हैं जो खास निशान वाली हो, हाँ, जो ब्रांडेड, जो आला ब्रांड की गाड़ियां होती हैं। जब लोग उन गाड़ियों को खरीदते हैं, क्यों नहीं कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लेते? नहीं, वो उसमें भी जो हाई एंड, जो जिनके नाम आपको बेहतर पता होगा कि कौन सी गाड़ियां जो हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा समझे जाते हैं, बड़े प्राइड उसमें समझी जाती है कि हमारे पास तो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तो मर्सिडीज है, ऐसी एक बात कह रही हूं, तो हमारे पास तो फलां गाड़ी है। तो उसमें भी आप देखें डिफरेंसेस है ना, कोई हाई एंड है कोई बिल्कुल हो। इसी तरह घोड़ों में भी उस जमाने में कई घोड़े आला नस्ल के होते थे, तो घोड़े चूंकि सवारी का काम भी है और उस जमाने में भी प्राइड का काम भी देते थे, यानी बड़ी इसको शानो शौकत वाली चीज समझा जाता था कि फलां के पास वो घोड़ा, इस नस्ल का घोड़ा। जैसे आज गाड़ी, सबकी गाड़ियां सवारी के ही काम आती हैं, खाते थोड़ी हम गाड़ी को, सवारी करते हैं ना, लेकिन फिर हम क्यों लग्जूरियस गाड़ी की तरफ जाते हैं? उसमें भी इंसान प्राइड अपनी महसूस करता है, बड़ी शान महसूस करता है। तो इसकी भी मोहब्बत देखें, गाड़ियों की कई लोगों को इतनी मोहब्बत होती है, उनको बस ये हर वक्त पता है कौन से मॉडल की आ रही है, कौन सी जा रही है, कौन सी ये। तो ये भी एक इंसान के लिए इसकी मोहब्बत डाल दी गई। और आज भी अगर घोड़ों को भी लिया जाए ना, तो घोड़े भी जो बहुत मालदार लोग होते हैं वो एक, हालांकि घोड़े सवारी के लिए आजकल यूज नहीं होते, लेकिन एक उनके पास घोड़े रखने का एक रिवाज है आज भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि घोड़े की पेशानी के साथ खैर कयामत तक रख दी गई है, खैर को बांध दिया गया, ठीक है? तो इसलिए ये तो मतलब एक बहुत लग्जूरियस चीज और एक बहुत बड़ी चीज हमेशा समझा जाता रहेगा, इसके साथ खैर बंधी रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर अरबी घोड़ा फजर के वक्त अल्लाह की इजाजत से दो दुआएं करता है, कहता है, ऐ अल्लाह जिसके कब्जे में तूने मुझे दिया, तो इसके दिल में इसके अहल और माल से ज्यादा मेरी मोहब्बत दे दे। देखें तो ये वो दुआ करता है। इसी तरह घोड़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों की मोहब्बत तीन किस्म की है। एक तो वो लोग हैं जो घोड़ों को पालते हैं और अल्लाह के रास्ते में इन पर सवार होकर जिहाद करने के लिए निकलते हैं, इनके लिए तो ये बहुत अजर व सवाब का काम है। जैसे आज के वक्त में आपके पास गाड़ी है, आप उस गाड़ी को दीन के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप किसी तालीम के लिए जाते हैं, आप कुछ सीखने के लिए जाते हैं, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो रही है, आप लोगों को लेकर जाते हैं, उस पर सवार करते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं जहां पे कोई वो खैर की बात सुने, तो वो तो बहुत अजर व सवाब का बायस है। दूसरे वो जो फख्र व गरूर के तौर पे पालते हैं घोड़े, उस जमाने में भी पालते थे, आज गाड़ियां पाली ही जाती हैं एक तरह से, उनकी कितनी मेंटेनेंस और वो होती है, तो वो किस लिए? बस खड़ी की हुई शो शाह के लिए, हमारे पास ये फलां गाड़ी है, मुझे लिख लेने चाहिए थे नाम के, गाड़ियां जो बड़ी आला होती हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, लेकिन जो आपको पता है कि जो भी वो फलां पोर्श है और पता नहीं क्या क्या गाड़ियां, तो वो फखर के तौर पे उनको रखते हैं, उनके लिए वबाल है कि लोग जरा देखें मैं इस गाड़ी में जब बैठ के जाऊंगी ना, लोगों को पता चलेगा किस गाड़ी में आई है ये, बड़ी धूम के साथ उसको निकालते हैं और बहुत फराटे भरती भी गाड़ी जाती है, लोगों की नजरों में मेरी बड़ाई पता चले, तो ये एक सजा होगी इसकी वहां पे कयामत के दिन, इसके ऊपर भी ये इस इंसान के ऊपर ये बोझ होगी, वबाल होगी। तीसरे वो जो सवाल से बचने और उसकी नस्ल की हिफाजत के लिए पालते हैं और अल्लाह का हक नहीं भूलते, ये ना अजर होगा ना अजाब के मुस्तहिक होंगे। यानी जैसे हम अपनी जरूरियात के लिए, मुसल ने ऑफिस जाना है, किसी ने ग्रोसरी पे जाना है, किसी ने कुछ करना है, डॉक्टर के जाना है, तो उसके लिए आपने गाड़ी रखी हुई अपने जाती कामों के लिए, लेकिन अल्लाह का हक भी नहीं आप भूलते, तो ये कोई अजर भी नहीं है कोई अजाब भी नहीं। तो घोड़ा उस वक्त था, आज वही गाड़ी के तौर पर ले लें इसी चीज को, और फिर देखें कि इसकी मोहब्बत भी कितनी इंसानों के दिलों में। और क्या है अल अनआम, انعام کیٹل جو ہوتی تھی نا اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی کھیتی باڑی کے لیے, کہ انسان کھیتی باڑی کرے تو اس کے لیے بیل ہوتے تھے اور اس کے لیے اور چیزیں استعمال کی جاتی تھی. تو یعنی جو اس کی زراعت تھی اس کا ایک ذریعہ تھی. تو ان کی بھی محبت, دیہاتی لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی کتنی قدر و قیمت ہے, گائے بھینس گھوڑے ان سب کی. آج کے وقت میں یہ کیا ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے کاروباروں کو چلاتے ہیں؟ مثلاً آپ کے کوئی آفس اسپیس ہو سکتی ہے, آپ کے کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی لگژریس بلڈنگ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے, ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے بڑا سارا, یا اور کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں, کوئی آپ کے امپلائیز ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں. والحاف اور کھیتی, کھیتی کو بھی محبوب بنا دیا گیا. آپ دیکھیں آج بعض لوگوں کو کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوتی لیکن وہ لینڈ لارڈ کہلانا چاہتے ہیں نا, تو زمینیں خریدتے جاتے ہیں خریدتے جاتے ہیں. زمین کی بھی محبت نا انسان کو بہت ہی ہوتی ہے, اور اسی لیے تو کہتے ہیں کتنی جائیدادیں ان کے پاس, کتنی زمینیں ہیں, فلاں کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, فلاں کے پاس اتنی. تو یہ بھی ایک محبت ڈال دی گئی. اور یہی محبتیں ہیں نا کہ آج کسی سے پوچھ لیں قرآن کیوں نہیں پڑھنا, کیوں نہیں سیکھنا چاہتے, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا. وہ ٹائم کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ انہیں دیکھیں, آپ غور کریے گا انہیں سات چیزوں کی مصروفیت انسان کا ٹائم کھا لیتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے, اس کی زینتیں ہیں. کسی زلزلہ زدہ جگہ کو جا کے دیکھیں, وہاں کا نقشہ کبھی دیکھیں, وہی حال ہونے والا اس دنیا کا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسی جگہ کو دکھاتے ہیں کبھی خبروں میں, کہیں زلزلہ آیا کیسے چھتیں گری ہوتی ہیں, کیا حال و بے حال ہوتے ہیں, کوئی لوگ نیچے دب چکے ہوتے ہیں, کوئی کہیں ہوتے ہیں. وہی حال اس دنیا کا ہو جانا ہے, وہی حال ان محلات کا ہو جانا ہے, وہی حال ان گاڑیوں کا, ان خزانوں کا, ان سب چیزوں کا یہ حال ہو جائے گا. لیکن انسان دیکھو ان کے پیچھے کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے. ان کی طلب, ان کی خواہش, ان کی تڑپ دل میں اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور اللہ نے بنا دی لیکن ایک حد کے اندر رہ کے تو ٹھیک ہے. حد سے جب یہ باہر نکلتی ہے نا تو جہنم کے راستے پہ انسان کو چلا دیتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اس خواہش کو یہ لسٹ دی گئی ہے نا, اس کو دل سے نکال تو نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, اور نہ ہی یہ آپ سے ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو نکالیں, کیونکہ اللہ نے خود ڈالی ہے نا اور کسی پرپس سے ڈالی ہے. میں نے آپ کو حکمتیں بتائیں, تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے پھر ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہمارے دو ایکسٹریم ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں. ایک ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یہ تو سب بری ہیں, ان کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو دنیا ہے, یہ تو ایسے ہے, اور ہمیں تو یہ چاہیے ہی نہیں, ہم تو بس ان سے بالکل فارغ اپنے آپ کو سمجھیں, رہبانیت کی طرف چل پڑتے ہیں. دوسرا اس کا ایکسٹریم کیس کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر اتنا کھب جاتا ہے, اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا, اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ ایک آخرت ہے جس کو میں نے سنوارنا ہے, جس کے لیے میں نے عمل کرنا ہے. وہ انہیں چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جس کو کہتے ہیں نا دنیا کا کتا بن جاتا ہے. تو اسلام ہمیں کیا راستہ بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرو, ضرور کرو, اپنی ضرورت پوری کرو, گاڑی رکھنا کوئی برا نہیں, عورت کے ساتھ تعلق جب تک کہ وہ نکاح ہو گیا ہو تو کوئی برا نہیں, اولاد کوئی بری نہیں ہے, سونے چاندی کے ڈھیر بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی جمع ہو جائے تو کوئی برائی نہیں ہے, اگر انسان کو اپنی آخرت یاد رہے, اگر یہ انسان کو اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ کر دے. انسان اللہ نمازیں ہی اپنی بھول گیا, انسان اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو مال جمع کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مجھے اگر میں انہی اسلام کے قوانین کے اوپر چلوں گی तो फिर कहाँ से माल जमा करूंगी, फिर ये जॉब तो फिर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब तो आपको उसमें रिबा भी आ गया, उसमें रिश्वत भी आ गई, उसके अंदर और जखीरा अंदोजी भी आ गई, उसमें बेईमानी भी आ गई, उसमें झूठ भी आ गया, तो इनके बगैर तो तिजारत मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं सकता। इस्लाम के अहकाम को तोड़ के जब इंसान इन चीजों के पीछे अंधा हो जाता है तो यही खसारा है, ये है नाजायज। लेकिन जब तक इंसान इतदाल में रहते हुए इन चीजों को इस्तेमाल करे, जरूर करे। क्या दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पूरी एक सल्तनत नहीं थी? क्या क्या लग्जरीज उनके पास नहीं थी? महल थे, महल्लात, ऐसी ऐसी सवारियां कि जो आज भी नहीं, आपको तो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा एक कालीन हो जिसके ऊपर बैठ के और आप चले जाएं उड़ के। आज हो सकता है कि किसी के पास प्राइवेट जेट हो तो वो कह सकता है कि हाँ मेरे पास ये चीज है। उनके पास तो आज हम, मेरे आपके पास तो हम सोच भी नहीं सकते वो चीजें जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थी। क्या कहां तक उनकी हुकूमत थी? लेकिन उसमें रहते हुए भी अल्लाह को नहीं भूले। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी तहज्जुद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अगर ये सब चीजें बुरी होती या ये सब चीजें हैं जिसके पास, तो बहुत बुरी बात है। दीन का मतलब यह है कि कंगले हो जाओ बिल्कुल। दीन का मतलब यह है कि इन सारी चीजों से आपको फारिग होना चाहिए। ना आप अच्छा पहने, ना आप अच्छा खाएं, बस फकीराना हुलिये में घूमें। तो ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। मगर हाँ, इतदाल होना जरूरी है। माल ठीक है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन माल हम आज क्यों चाहते हैं? क्या अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, या शो के लिए, मुकाबलेबाजी के लिए, दूसरों से आगे बढ़ जाने के लिए, या नेकी कमाने के लिए? माल दोनों तरह से यूज हो सकता है। क्या हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास माल नहीं था? सबसे मालदार थे। क्या हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल नहीं था? माल था ही, तो वो जंगों के अंदर मौके के ऊपर जिस वक्त तैयारी का वक्त आता था तो इतना माल ला के ढेर कर देते थे। मालदार थे ही तो बाग खरीद रहे हैं, मुफ्त में तो नहीं मिल जाते थे ना। तो क्या ये बुरी बात है माल होना? नहीं, बुरी बात नहीं है। क्या बड़ा घर होना, अच्छा घर होना बुरी बात है? नहीं, वो बुरा नहीं है। एक वो खातून भी है, याद है, जो महल्लात में रहती थी और अल्लाह के हाँ उसके करीब एक जन्नत में महल है जहां पे अब उनका मकाम है, और जन्नत की औरतों की सरदार ज़दासिया रज़िला तलाना। क्या वो महलों में नहीं रहती थी? लेकिन उन महलों ने उनको अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर दिया। उन महलों में रहते हुए भी वो अल्लाह को नहीं भूले। इन महलों में रहते हुए भी उनके अंदर तकब्बुर नहीं आया। तो इन चीजों को पा सकती हैं, लेकिन इनको पा के तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना आए, यही तो सारे इम्तिहान है ना इनके। ये सारे अटैच्ड हैं, ये टेस्ट हैं हमारे। तकब्बुर तो नहीं आया, शुक्रगुजारी आई कि नहीं आई, दूसरों का एहसास करना आया या नहीं आया, अल्लाह की याद इनके अंदर रहते हुए इन सारी शहवात में अल्लाह की याद आई या नहीं आई, अल्लाह की फरमा बरदारी फिर भी तुमने करी या नहीं करी, ये सब टेस्ट हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे देखें, दुनिया को इस तरह इमेजिन करें कि जैसे एक समंदर है, तो समंदर समझ लें ये सारी ख्वाहिशात हैं, दुनिया कह लें, ख्वाहिशात कह लें, ये औरतें, घोड़े, घर, गाड़ियां, सोने चांदी, जेवर, ये सब ये दुनिया है ना, ये दुनिया का साजो सामान, ये समंदर है। उसके अंदर एक कश्ती है जो इंसान का दिल है। अब इस दिल ने रहना इसी समंदर में है, चलना इसी समंदर में है, लेकिन जब तक समंदर का पानी कश्ती से बाहर रहेगा, कश्ती चलती रहेगी। और जिस दिन ये समंदर का पानी कश्ती के अंदर आया तो क्या होगा? کشتی ڈوب جائے گی. یہی حال انسان کے دل کا, کہ یہ دل اس نے چلنا اس دنیا کی خواہشات کے یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کے سمندر میں ہی چلتا رہے گا, لیکن جب تک ان کی محبت اس دل سے باہر رہے گی تب تک تو خیر ہے, عافیت کے ساتھ چلے گا, اس کی کشتی چلتی رہے گی. لیکن جس دن ان چیزوں کی محبت دل میں جگہ پکڑ گئی نا, کہ انسان یہ نہیں میں چھوڑ سکتی, بس کیا کروں وہ نہیں چھوڑ سکتی, اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے, میں کیا کروں, چاہے کسی عورت یہ مجھے پسند ہے, چاہے اس کے ساتھ ناجائز طور پہ ہی مجھے تعلقات رکھنے پڑے, لیکن مجھے بس چونکہ یہ پسند ہے تو بس. بیٹوں کی محبت اگر ایسی ہو جائے کہ بیٹے مجھے چاہیے, چاہے کہیں حلال تعلق سے ملیں یا نہیں حرام تعلق سے ملیں, مجھے بڑی گاڑیاں چاہیے چاہے چوری سے ملیں یا کسی اور ذریعے سے ملیں, اگر ان کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے دل کے اندر, جڑ پکڑ گئی ہے نا, تو کشتی غرق ہو جائے گی, یہ ڈوب جائے گا انسان, اس نے نہیں بچنا. تو یاد رکھیں, ہمیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی, ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک طرف یہ پتا چلتا ہے اچھا دنیا کی اتنی مذمت آئی, دنیا ایسی ہے, دنیا کی محبت, ایک حدیث میں یہ ہے دنیا کی محبت یعنی جو ایسی ہو جو دل میں جڑ پکڑ جائے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی ہے دلوں کے اندر, تو اب ہم کیا کریں, کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں, کیا ہم ان سے نفرت کریں, کیا ہم بالکل رہبانیت اختیار کر لیں, کیا کبھی ہم ان کو انجوائے نہیں کر سکتے, کیا کبھی ہم ان کو استعمال نہ کریں. تو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے, جب تک آپ ان کو اللہ کی رضا کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے مطابق حلال طریقے سے ان کو حاصل کریں اور صحیح جگہ پہ ان کو خرچ کریں, صحیح جگہ پہ ان کو لگائیں, ان کے ساتھ آپ کبھی بھی اللہ کو نہ بھول جائیں, اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے یہ آپ کو ہیلپ نہ کریں, تب تک ٹھیک ہے. اور جب آپ نے لمٹس کراس کر دی, دیر از اے فائن لائن, بس سمجھ لیں ایک بہت فائن لائن ہے, جو ہی آپ نے لمٹ کراس کی نا, اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ کہ وہ فائن لائن کراس کر جاتا, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. جس دن وہ فائن لائن کراس ہو گئی تو انسان غرق ہو جائے گا. حضرت عمر فرماتے تھے نا جب کہ یہ جب آیت پڑی تھی تو فرمایا, اے اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کی محبت, جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے پرکشش بنا دیا, اٹریکٹیو بنا دیا, ہم ان کو دیکھ کر یہ نہیں ہو سکتا ہے خوش نہ ہو. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو ان کے حق کے ساتھ استعمال کروں اور میں ان کا حق ادا کرنے والا بنوں, کہ جیسے خرچ کرنا چاہیے نا ویسے خرچ کروں, جو ان کا حق ہے اس طرح سے حق ادا کروں کہ یہ چیزیں پا کے بھی انسان اللہ کے آگے اور جھک جائے اور شکر گزاری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا, یہاں پہ مرغوبات بتا دیے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کر دیا ہے ان کی محبت کو, ان کی محبت دل میں ڈال دی ہے. تو اب انسان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور یہ اختیار کر کے انسان اگر چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو استعمال کرے. اور پھر دیکھیں یہاں پہ جو اس چیز کا آیا نا ذکر, متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے, جب تمہیں یہ چیزیں مل جائیں تو اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ بس ہمیشہ کے لیے مجھے جنت مل گئی اب میں یہیں پہ انہیں کے اندر مست ہو جاؤں, نہیں, یہ ختم ہو جانے والا ہے, یہ بہت تھوڑا سامان ہے, یہ بہت تھوڑے دن کی فائدے کی چیزیں ہیں. ہم یہ چیزیں اس لیے لیتے ہیں نا تاکہ ہم لوگوں کی نظروں میں عزت پالیں, مقام پالیں, بس دنیا جنت بن جائے, ایسا نہیں ہونے والا. یہ تو استعمال کی تھوڑی سی ضروریات کی چیزیں ہیں, ان کو جس جو ان کی جگہ ہے نا اسی پہ رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. क्योंकि इस दुनिया की सारी दुनिया की भी वैल्यू ना अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मच्छर और उसका भी पर। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे खंदक के मौके पे खंदक की खुदवाई हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए, देखा कि मुहाजरीन और अंसार सर्दी के बावजूद सुबह सुबह खंदक खोद रहे हैं। उनके पास ना कोई गुलाम था ना कोई और हेल्प थी, कोई खुदाई में उनकी मदद करने वाला नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी थकन और उनकी भूख को देखा तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नल आयशत आयशुल आखिरा, ऐ अल्लाह जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं। देखे किस तरह से उनको उनका माइंड डाइवर्ट किया, कोई बात नहीं है अगर यहाँ पे ये मुश्किल उठानी भी पड़े, और फिर उनको दुआ दी इन अंसार को, तो दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन का सामान है, असल जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु इंदहू हुस्नुल मआब, ये तो थोड़ा सामान है, इससे अच्छा अल्लाह के पास ठिकाना है, लौटने की जगह है। तो इन जाहिरी लज्जतों की वजह से अगर अल्लाह की तरफ नहीं आते इन शहवात में पढ़ के, या जो लोग काफिर थे आपको पता है कि वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे, इस वजह से अगर हम बात करें उन लोगों की जो नजरान के ईसाई आए थे तो वो क्यों नहीं ईमान ला रहे थे, लास्ट टाइम बात हुई थी ना हमारी कि फिर ये ओदे, ये हमारी शान व शौकत, ये हमारे आगे पीछे लोगों का फिरना, ये सब चीजें फिर ये तुम्हारे पास रहेंगी नहीं, वो इसलिए ईमान नहीं लाते थे। अगर उनकी तरफ खिताब समझा जाए तो तुम लोग कुफर पे इसलिए अड़े हुए हो कि इन चीजों की कुर्बानी नहीं दे सकते, हालांकि अल्लाह के पास ऐसी चीज है जो इससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा ठिकाना अल्लाह के पास है। तो मोमिन को हमेशा यही दुआ करनी चाहिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की हसना पहले मांगी है ना, दुनिया की हसना क्या है कि ये सारी चीजें मिले और तब भी इंसान अल्लाह को ना भूले, तब ये हसना बन जाती है ना आपके लिए, वरना तो अजाब है, वरना तो एक बुरी बीवी अजाब है, एक बद औलाद अजाब है, वरना तो ये सोना और चांदी ये तो क्यामत के दिन सांप बन जाएंगे अगर इनकी जकात नहीं दी होगी तो, ये सांप डसेगा, वरना ये सवारियां ये तो अजाब बन जाएंगी, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई कि वबाल बन जाएंगी तकबर और गरूर हो तो, वरना ये खेतियां ये अनाम ये जो देखिए हम उस क्यामत के दिन ऐसा भी होगा बाज लोगों ने जिन्होंने जकात नहीं दी होगी उनको जानवर अपने पैरों के नीचे रोंदेंगे हशर के मैदान में। ये जमीन जो है किसी की नाहक जमीन अगर किसी ने हत्याई होगी तो उस जमीन का तौक बना के उसके गले में डाल दिया जाएगा, तो ये तो सारी वबाल भी बन सकती है। तो अल्लाह दुनिया की हसना देना, और ये हसना कब है, जब अल्लाह की इताअत के साथ मिले। ये तो इतनी प्यारी ये दुआ है ना कि औलाद भी हसना वाली देना कि अल्लाह जिससे मुझे भलाई मिले, मेरी नेकियों में इजाफा हो, औरत भी हसना वाली मिले, जमीन जायदाद भी मिले तो हसना वाली मिले, तब ये बुरी नहीं है, और आखिरत में भी हसना देना। तो दुनिया की हसना मिलेगी तो फिर उसी से हम आखरत कमा सकेंगे ना, अगर दुनिया में हसना ही नहीं है ये अजाब बनी हुई है तो फिर आखरत कैसे कमाएंगे इनके जरिए। और देखिए दुनिया जाना मता है ना, थोड़ी है, थोड़ा सा सामान है, और इसके पीछे दौड़ लगाने वाले ना बहुत ज्यादा है। देखें इस वक्त जितने भी लोग भाग रहे हैं वो सब इसी के पीछे भाग रहे हैं ना, इसके पीछे दौड़ने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन आखरत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और इसके पीछे भागने वाले कितने हैं, ज्यादा हैं कि थोड़े हैं, थोड़े हैं ना, बहुत बहुत थोड़े हैं। तो हमारा क्या चांस है कि हम कहां पे विन करें, आखरत के मैदान में ना, क्योंकि यहां पे ये तो थोड़ी है और चाहने वाले बहुत ज्यादा है, और वो ज्यादा है और उसके चाहने वाले उसके पीछे दौड़ लगाने वाले कम है। अच्छा ये जो लिस्ट दी गई इसके अलावा भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, और आज के वक्त में तो और इतनी अट्रैक्शंस हैं, इतनी टेम्पटेशंस हैं, कहीं पे कोई और तरह की, क्योंकि नई नई चीजें निकल आई हैं तो और तरह की भी टेम्पटेशंस हैं जो इंसान को पुल करती हैं अपनी तरफ। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज टेम्पटेशन बनी हुई है। जिस चीज का ख्याल आपको सोते जागते आ रहा है ना, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इवन नमाज के लिए भी खड़ी हुई है तो वो ही ख्याल आते जा रहे हैं, समझ लें वो ही है आपके लिए फितना। समझ लें कि आपने लाइन क्रॉस कर दी है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है ना कि मैं हद में रह के इनको इस्तेमाल कर रही हूं या नहीं। तो इनकी खातिर नहीं जीना, इनको इस्तेमाल करना है अपनी नेकियां बढ़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी उम्मत वसत के फर्द के तौर पे पूरी करने के लिए। तो चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी चीज इनमें ज्यादा महबूब है, इसको एनालाइज जरूर करें, ये ना हो कि ये जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली बन जाए। अल्लाह ताला ने फिर ये सारी सात चीजें बता के फरमाया, कुल कह दीजिए, अनबी उकुम बे खैर मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं इससे भी ज्यादा अच्छी चीज की। औरतों बेटों खजानों से, सोने चांदी से, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, इनसे भी ज्यादा अच्छी चीज तुम्हें बताऊं। और खबर मैंने बताया ना कौन सी ये खबर है, नबा किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज। अब जिसके पास ये सब चीजें हैं ना, शहवात ये सारी हैं, उससे पूछा जा रहा है क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बताऊं, या जिसके पास नहीं है और वो इनके पीछे दौड़ रहा है तो उसको भी कहा जा रहा है। जानना चाहते हैं आप, अल्लाह ताला ने बताया, लिल्लज़ीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके रब के पास उनके लिए क्या है, जन्नात बागात हैं, तजरी मिन तहतिह अल-अनहार खालिदीन फीहा, जिसके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा रहने वाले उसमें, अज़वाज मुतहरा, और बीवियां हैं जो पाकीज़ा हैं। कैसी तहारत वाली हैं, ज़ाहरी तहारत भी है, बातनी तहारत भी है, हिस्सी भी है, मानवी भी है, फिजिकली भी, लिटरली भी है ना, कि जो इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल पाक साफ रहे, और एक ये भी है कि पाक दामन है, उनका कैरेक्टर अच्छा है, खराब कैरेक्टर की नहीं है, तहारत दोनों तरह की हो गई। और रिदवान मिन अल्लाह, और सबसे बड़ी बात जो है वो है अल्लाह की रजा। ये चीजें बता दी गई उनके मुकाबले में जो सात चीजें पहले गुजरी हैं। फरमाया तुम उन चीजों के पीछे खुद को हलकान कर रहे हो और रब को भूल रहे हो, क्या इससे बेहतर चीज ना तुम्हें दे दूं, इन चीजों से ज्यादा कीमती चीज, इनसे ज्यादा हमेशा रहने वाली, वो ये चीज है जो ऐसे बागात हैं जिनमें हमेशा रहने। आप मुझे बताएं कि पिछली जितनी भी चीजों की लिस्ट आई है उनमें से कौन सी चीज है जो हमेशा रहने वाली है, कोई भी चीज नहीं। अगर किसी इंसान को सारी जिंदगी भी ये चीजें मिली रहे तब भी एक दिन वो खुद ही मर जाता और इनको छोड़ के चला जाता, और जिसको फौरन हासिल हो उसको पहले ये धड़का लग जाता है, हाय मुझसे कहीं ये मेरे हाथ से चली ना जाए, मुझसे छूट ना जाए। तो दुनिया की तो किसी चीज को भी खलूद नहीं है, हमेशगी नहीं है, लेकिन वहां पे हमेशगी है, वहां पे अजवाज जो मुतहरा हैं, ऐसी बीवियां जो कि तहारत वाली हैं, पाकीजा हैं। अल्लाह ताला ने उससे बेहतर चीजें यहां पे गिनवाई हैं। तो तुम एक तरफ ये सात चीजें रख लो और इनके मुकाबले में आखरत की ये नेमतें रख लो, बागात, खलूद, खलूद भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है ना, कि हमेशा रहेंगी ये चीजें, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी मिलती है साथ ही फौरन ये खौफ हर वक्त लगा रहता है, चोरी ना हो जाए, हाय कोई हमसे छूट ना जाए, हमसे दूर ना हो जाए, हमारा प्यारा है हमसे जुदा ना हो जाए, हाय ये दिन खुशी के कहीं खत्म ना हो जाए, यही रहता है ना। तो वहां पे खुलूद भी एक नेमत है। फिर पाक साफ औरतें और रजाए इलाही। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे औलाद का जिक्र नहीं आया, तो दुनिया में तो इंसान देखिए औलाद इसलिए चाहता है कि मेरा नाम आगे बढ़े, मेरी नस्ल आगे बढ़े, या अपने कामों में मदद मिले, تو وہاں پہ تو کوئی فنا ہے ہی نہیں انسان کو، اس لیے اس کو کوئی وارث چاہیے ہی نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر کسی کو دنیا میں اولاد نہیں ملی نا، تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا کہ تمہیں اولاد چاہیے. جنت میں تو ہر خواہش پوری ہونی ہے، ہر خواہش. کتنی پیاری وہ جگہ ہے نا کہ یہ دنیا کی ناقص اور فانی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان میں مست ہوئے ہوئے ہیں اور یہی ان کو چھوڑتی نہیں ہے، ان کے نشے میں ایسے غرق ہیں. تو تم ان کو اے نبی بتا دو کہ اس سے بہتر نعمت اللہ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کن کو دے گا؟ متقین کو دے گا. ایمان والوں کو نہیں کہا گیا، متقی لوگوں کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.